الحمد لله
حاضر.
والسلام.
أوه.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان
أوه.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. کلاس میں ہم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کتاب ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں سے پڑھتے ہیں، اور جو پچھلا درس ہوا تھا وہ جمعے کے دن کی مجلس میں ہوا تھا، اور اس میں ہم صفحہ نمبر 71 پر تھے، 71. اور اس میں جو عنوان چل رہا تھا وہ ایک سوال کا جواب. سوال کیا تھا کہ کفر اور اسلام کا معیار کیا ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے کفر اور اسلام کا، یعنی سٹینڈرڈ ہے یا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، ایسی بغیر سٹینڈرڈ کے تو ہے کیا وہ معیار، اور کس وجہ سے کسی مسلمان کو مرتد یا خارج از اسلام کہا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ارتداد کے لغوی معنی سمجھانے سے شروع کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ دو قسم سے انسان جو ہے نا وہ مرتد ہو جاتا ہے، دو طریقوں سے انسان مرتد ہوتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا دین اختیار کر لے، دین اسلام کو رد کر دے، اور دوسرا دین صراحتاً اختیار کر لے. یہ ایک شکل ہے مرتد ہونے کی. اور دوسری شکل مرتد ہونے کی یہ تھی کہ وہ الحاد کا شکار ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی ایسی چیز کا جو کہ ضروریات دین میں سے ہے اس کا انکار کرتے ہیں وغیرہ، جو ساری تفسیر اس کتاب کے اندر حضرت نے لکھی ہے. تو ہم اس میں پھر بات یہ پڑھ رہے تھے، یعنی تنبیہ پڑھ رہے تھے، یعنی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ ٹو ریمبر، کیا کہ دو باتیں قابل خیال ہیں یہاں پر. اول تو یہ کہ کفر و ارتداد اس صورت میں عائد ہوتا ہے جبکہ حکم قطعی کے تسلیم کرنے سے انکار اور گردن کشی کرے، ٹھیک ہے، یعنی سراتن انکار کر دے، ڈینائی کر دے کسی حکم قطعی کو، جیسے نماز کا حکم منع کر دے کہ نہیں نماز کا حکم ہے ہی نہیں، یا نماز جو ہے وہ اس شکل کی ہوتی ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کا انکار کر دے، جیسے کہ مانعین زکوٰۃ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا تھا، ٹھیک ہے، یا ختم نبوت کا انکار کر دے، جیسے کہ اس وقت بھی مسیلمہ کذاب نے کیا، اور اسود انسی نے کیا، اور اس طرح کے دو تین اور لوگوں نے بھی کیا، اور آج کے دور میں ختم نبوت کا انکار مرزا غلام احمد قادیانی کرے، یا شکیل بن حنیف کرے، یا کوئی اور کرے، ٹھیک ہے. تو کسی حکم قطعی کے تسلیم کرنے سے انکار اور گردن کشی کرے، اور اس حکم کے واجب التعمیل ہونے کا عقیدہ نہ، ٹھیک ہے، یعنی نماز پڑھنا جو ہے وہ واجب التعمیل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص حکم کو تو واجب التعمیل سمجھتا ہے مگر غفلت یا شرارت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کو کفر و ارتداد نہ کہا جائے گا اگرچہ ساری عمر ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت نہ آئے، مگر اس شخص کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کیونکہ پچھلے جو درس کے بعد نا کچھ ساتھیوں کے ساتھ جو بیٹھک ہوئی تھی، تو اس میں اس طرح کے ایک دو سوال ایسے کر رہے تھے کہ جیسے لگا کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو بھائی پوچھ لیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں سر پہ سے اگر گزر رہی ہے کوئی اور ایسا میجر کوئی مسئلہ ہے تو بھائی کلیئر کریں نا اس کو. تو بھائی گناہ سے جو کوئی کافر نہیں ہوتا، چاہے آپ کس قسم کا بھی گناہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو حکم کا انکار کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے اگرچہ ساری عمر ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل کرنے کی نوبت نہ آئے، یعنی ساری عمر گناہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل نہیں کیا اس نے، لیکن اس شخص نے مسلمان ہی سمجھے گا. اور پہلی صورت میں کہ کسی حکم قطعی کو واجب التعمیل ہی نہیں جانتا اگرچہ کسی وجہ سے ساری عمر اس پر عمل بھی کرتا رہے، جب بھی کافر مرتد قرار دیا جائے گا. مثلاً ایک شخص پانچوں وقت کی نماز کا شدت کے ساتھ پابند ہے مگر فرض اور واجب و تعمیل نہیں جانتا، اس کو فرض نہیں جانتا، نہیں مانتا کہ یہ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ شخص کافر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا شخص جو فرض جانتا ہے مگر کبھی نہیں پڑھتا، اگرچہ فاسق و فاجر اور سخت گناہ کار ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کافر نہیں. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है काफिर हो जाना और एक होता है फासिक फाजर हो जाना। फासिक फाजर का मतलब ये समझा जाता है कि एक शख्स मुसलमान है लेकिन गुनाहगार है और बहुत ज्यादा गुनाहगार, उसको फासिक व फाजर कहा जाता है, ठीक है। और काफिर तो इस्लाम का इनकार करने वालों को कहा जाता है। फासिक और फाजर इंसान का ईमान कमजोर हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता, ज़ईफ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं हो जाता फासिक और फाजर का ईमान, ठीक है। जबकि काफिर जो होता है उसका ईमान मर जाता है, खत्म हो जाता है, उसका गला घोट दिया जाता है काफिर का। ये फर्क है। एक इंसान जिंदा है अगरचे कि उसके अंदर बहुत ही लागर है, कमजोर है, चला भी नहीं जा रहा उसे कमजोरी की वजह से, लेकिन भाई जिंदा तो वो है ना, जान तो है ना उसके अंदर, रूह तो है ना उसके अंदर, ठीक है। तो ये रूह बतौर ईमान के, ईमान है ना उसके अंदर, मुसलमान है चाहे कितने ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब रूह निकल जाएगी तो मोटे से मोटा, ताजे से ताजा, पहलवान से पहलवान, उसके अंदर से रूह निकल गई, अब वो काफिर, ठीक है ना। तो यही मिसाल है कि सारी जिंदगी नमाज पढ़ता है, हज करता है, रोजे रखता है, यानी मोटा ताजा मुसलमान है, बड़ा जबरदस्त किस्म का, हैवी वेट किस्म का मुसलमान है, लेकिन रूह निकल गई, ईमान निकल गया तो मर गया, खत्म बात, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं कोई कि इफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इल्म ए पर्सन इन रिमोट लोकेशन प्रेज बट डोंट नो अबाउट फराइज ऑफ इट द फर्जियत ऑफ इट विल ही स्टिल बी ए काफिर डोंट नो। ये अभी आगे आ रही है एक्चुअली, आगे सब्जेक्ट के ऊपर निशान, इसके ऊपर बात होगी, हजरत ने लिखा है इसके बारे में। अच्छा, तो फरमाते हैं कि दूसरी बात काबिल गौर ये है कि सबूत के एतबार से अहकाम इस्लामिया की मुख्तलिफ किस्में हो गई हैं, तमाम अकसाम का इस बारे में एक हुक्म नहीं है, ठीक है। यानी इस्लाम में जो अहकाम हैं ना, तो वो मुख्तलिफ दर्जों के अहकाम हैं और वो मुख्तलिफ दर्जों के अलग अलग सिग्निफिकेंस है, अलग अलग उनका वेटेज है, सबका एक वेट नहीं है, सबकी एक सिग्निफिकेंस, सबकी एक जो है वो अहमियत नहीं है, बल्कि किसी की बहुत ज्यादा अहमियत है, किसी की कम अहमियत है, किसी की उससे कम अहमियत है, किसी की उससे कम अहमियत है, ठीक है। तो तमाम अकसाम का इस बारे में एक हुक्म नहीं है, यानी एक अहमियत नहीं है। यहाँ पे उम्मीद है कि आपके सामने कुछ होगा जिस पर आप लिख सकें कि एक हुक्म नहीं है का मतलब आसान जुबान में हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दर्जे की अहमियत नहीं है। कुफ्र और इर्तिदाद सिर्फ उन अहकाम के इनकार से आयद होता है जो कतई सबूत भी हों और कतई दलाला भी, यानी जिनका सबूत भी कतई हो, एब्सोल्यूट हो, डिटर्मिनिस्टिक हो, ठीक है, जिसमें कोई शक, कतई कहते हैं जिसमें कोई शक व शुबे का की गुंजाइश ना हो, शक व शुबा की, गुमान की, जन की, ठीक है, कोई गुंजाइश ना हो, उसको कतई कहते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना शरई टर्मिनोलॉजी के अंदर, उसको जन्नी कहते हैं, जन्नी, जन जौत से, तो के बाद जो जौ आता है जन, तो जन का जो लफ्ज है ना ये कतई का ऑपोजिट है, ठीक है। तो जो चीज कतई ना हो वो जन्नी कहलाती है और जो चीज जन्नी ना हो वो कतई कहलाती है, ठीक है। तो जन्नी सबूत और ज़न्नियुद दलाला फिर ये इनके इनके ऑपोजिट हो गए और उनकी यहाँ पे बात नहीं होती। यहाँ पे कतयुस सबूत और कतयुद दलाला, जिनकी दलालत भी कतई हो और सबूत भी कतई हो, अब जो है वो उसको अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि कतयुस सबूत होने का मतलब तो ये है कि उनका सबूत कुरान मजीद या ऐसी अहादीस से हो जिनके रिवायत करने वाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक से लेकर आज तक हर जमाने और हर कर्न में मुख्तलिफ तबकात और मुख्तलिफ शहरों के लोग इस कसरत से रहे हों कि उन सब का झूठी बात पर इत्तेफाक कर लेना महाल समझा जाए, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी बड़ी तादाद में लोग इस के गवाह हो, इस हुक्म के गवाह हो कि ना, हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने बात कही है, यानी सहाबा करा, ठीक है। अब यहाँ पर वो नहीं है, काफिर नहीं, मुशरिकीन ने ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी, या मुनाफिकीन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी। नहीं, ईमान वाले, और ईमान वालों को क्या कहा जाता है? नबी अलैहिस्सलाम के दौर के ईमान वालों को सहाबा कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा हो ईमान की हालत में, या नबी अलैहिस्सलाम को सुना हो ईमान की हालत में, ठीक है, तो उसको सहाबी कहा जाता है। यानी अगर नाबीना थे तो देखा तो नहीं नबी अलैहिस्सलाम को, लेकिन सुना नबी अलैहिस्सलाम। औरत थी और देखा नहीं पर्दे के पीछे से, सुना नबी अलैहिस्सलाम, वो भी सहाबिया हो गए, ठीक है ना, देखा ही उन्होंने, सुना नबी अलैहिस्सलाम को पर्दे के भी, क्योंकि साउंड वेव्स जो है ना ये ट्रैवल करती हैं फिजिकल मीडियम के थ्रू, ठीक है ना, लाइट रेज ट्रैवल नहीं करती है, बच्चों की साइंस की क्लास से भी फायदा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो लाइट वेव्स जो है वो ट्रैवल नहीं करती मीडियम के थ्रू, ठीक है, यानी जो फिजिकल मीडियम आ जाए, और साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी, अल्लाह ताला ने ही हमारी आंखों को बनाया, अल्लाह ताला ने ही हमारे कानों को बनाया, अल्लाह ताला ने ही लाइट वेव्स बनाई, अल्लाह ताला ने लाइट रेज बनाई, अल्लाह ताला ने ही साउंड वेव्स बनाई, तो सहाबियत के लिए, बल्कि उसके आगे और भी बहुत सारी चीजों के लिए, सिर्फ साउंड वेव्स को राइट, जो कि रैप अराउंड हो जाती हैं मीडियम के अराउंड, रैप हो जाती हैं, इधर से अपना रास्ता बना लेती हैं, उधर से अपना रास्ता बना लेती हैं, आसानी हो गई भाई, ठीक है, अगर लाइट रेज को बना देते तो कितने लोग जो हैं वो सहाबी होने से रह जाते, औरतें रह जाती, नाबीना लोग रह जाते, ठीक है। अच्छा, अलबत्ता किसी का डेफ होने का ने तो नहीं पढ़ा कहीं पे कि कोई सहाबी जो है ना वो कानों से महरूम थे, समाज से महरूम थे, ऐसे कोई कुदरतन अजीब अल्लाह ताला की कुदरत भाई, उस जमाने में कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो के बहरा हो, ठीक है, ईमान वाला हो लेकिन बहरा हो, तो ऐसा ऐसा एक्सेप्शन कोई नजर नहीं आती, ठीक है, तो फिर वो सहाबियत से रह जाते, अल्लाह ताला ने किसी को बहरा नहीं बनाया, अगर आपके इल्म में हो कोई ऐसे थे तो बता दीजिएगा, मुझे मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो कतियों सबूत होने का मतलब तो ये है कि उनका सबूत, यानी नबी अलैहिस्सलाम के जमान में भी कसरत से लोग थे जिन्होंने इस हुक्म को सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस बात को सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर जो ताबईन का जमाना था उसमें भी कसरत से लोगों ने इस बात को सुना, और ऑब्वियसली अगर सहाबा में से कसरत ने सुना होगा तो फिर नेचुरली ताबईन के दौर में भी कसरत से ही लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, और तबा ताबईन के दौर में भी कसरत सुना लोगों ने, और ये जो लिखा हुआ ना कि मुख्तलिफ तबकात और मुख्तलिफ शहरों के लोग, तो इसका मतलब बस इतना ही है कि सहाबा फिर शहरों में फैल गए, मुख्तलिफ तबकात से सहाबा का ताल्लुक था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई जो है वो ट्रेडर थे, कोई जो है वो फार्मर थे, कोई जो है वो असलहा बनाने वाले थे, कोई कौन कौन, तो ये मुख्तलिफ तबकात के सहाबी थे, ठीक है ना, और मुख्तलिफ इलाकों के, कोई यमन के रहने वाले थे, कोई जो है वो खैबर के रहने वाले थे, कोई जो है वो जद्दा के रहने वाले थे, मुख्तलिफ शहरों के रहने वाले, और ताबईन में तो और भी ज्यादा वसत हो गई, ठीक है ना, तो इसको ऐसे हुक्म को कतई सबूत कहा जाता है, इसी को इस्तेलाह में तवातुर और ऐसी अहादीस को अहादीस मुतवातिरा कहते हैं, ठीक है, तो ये आपने लफ्ज पहले भी कई दफा सुना होगा, जिनको नहीं मालूम इसका पता, इसका समझ नहीं थी तो वो आज उनको ये समझ भी मिल जानी चाहिए कि उनको इन्हीं को मुतवातिर कहते हैं और इन्हीं अहादीस को अहादीस मुतवातिरा कहते हैं, और ऐसे हुक्म को तवातुर कहते हैं, ठीक है, तो तवातुर का जो लफ्ज है ना ये खास नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जो कुरान मजीद की आयात हैं ये सारी की सारी अहादीस, ये भी सुन लीजिए अगर पहले नहीं सुना था, सारी की सारी अहादीस हैं नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से सहाबा कराम ने कुरान मजीद की आयात को सुना, और सारी की सारी मुतवातिर अहादीस, ठीक है, क्योंकि बड़ी कसीर तादाद में सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद एक एक आयत को सुना, ठीक है, फर्क इन दोनों में, जो जिनको इस्तेलाह में हदीस कहा जाता है, जिनको इस्तेलाह में कुरान कहा जाता है, फर्क सिर्फ ये है कि वो नबी अलैहिस्सलाम ने बता दी कि ये मेरा कलाम नहीं बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, और बाकियों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात नहीं बताई, ये फर्क है, ठीक है, और दूसरा फर्क यह है कि उनकी तिलावत की जाती है कुरान मजीद की वाली जो अहदीस मुतवातिर उनकी तिलावत की जाती है, और जो नबी अलैहिस्सलाम की के जो जो कलाम है उनकी तिलावत नहीं की जाती। ठीक है, तो यही दो फर्क है कुरान मजीद में और हदीस में। अच्छा, ये तो हो गया कतई सबूत। किसी को कोई सवाल है, इश्काल है इसके बारे में तो पूछिएगा। फिर उसके बाद दूसरी जो टर्म हजरत ने इस्तेमाल करी थी वो कतई दलाला। दलालत, दलालत का मतलब क्या होता है? दलालत का लफ्ज जो है वो अरबी के लफ्ज दल्ला या दुल्लू से निकला। दल्ला या दुल्लू का मतलब होता है पॉइंट करना। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जुबान में लफ्ज जो है ना वो बड़ा गंदे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन मतलब उस वहां भी यही है दल्ला। ठीक है, तो वो जो कि गुनाह के कामों की तरफ दलालत करता है ना, उसको हमारी उर्दू जुबान के अंदर दल्ला कहा जाता है, और ये गाली के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी जुबान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर तो बहुत बड़ी चेन है दल्ला हॉस्पिटल, राइट? वहाँ पे जो है वो सारे लोग अपना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो दल्ला हॉस्पिटल। तो वो जो है ना वो सेहत की तरफ दलालत करने वाला है, वो जो है वो शिफा की तरफ दलालत करने वाला है, तो उसको दल्ला हॉस्पिटल कह देते हैं। और दल्ला ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है। बहरहाल, तो कतई दलाला यानी जो बिल्कुल एब्सोल्युटली कंफर्म पॉइंट करता है अल्लाह ताला के किसी हुक्म या अल्लाह ताला के बारे में किसी इल्म को, उसको कतई दलाला कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इबारत कुरान मजीद में उस हुक्म के मुतअल्लिक वाकई हुई है या हदीस मुतवातिर से साबित हुई है, वो अपने मफहूम और मुराद को साफ साफ जाहिर करती है। ठीक है, कुरान मजीद की जो इबारत है या हदीस मुतवातिर कोई ऐसी है, ठीक है, जो कि अपने मफहूम और मुराद को साफ साफ जाहिर करती है। यानी जो पहले क्या चीज हो, कतई सबूत चीज, यानी जो कुरान की तो हर आयत ही कतई सबूत है, लेकिन हदीस में हर हदीस कतई सबूत नहीं है, हर हदीस मुतवातिर हदीस नहीं है। कुरान मजीद की हर आयत मुतवातिर है, इस बात को जरा लिख लीजिएगा कहीं पे, नोट कर लीजिए इस बात को कि कुरान मजीद की हर आयत कतई सबूत है, लेकिन हदीस मुबारका हर हदीस कतई सबूत नहीं। ठीक है ना, इसी वजह से हदीस के अंदर जो है ना फिर वो दर्जे बनते हैं मुतवातिर, सबसे ऊंचा दर्जा है, सबसे जो कि तवातुर के साथ साबित है। फिर उसके बाद हदीस मशहूर बनता है दूसरा। ठीक है, ये हदीस मशहूर जो है ना ये कतई सबूत नहीं। और फिर तीसरा दर्जा भी बनता है जो कि क्या कहते हैं, खबर वाहिद। ठीक है, आहाद भी उनको कहते हैं और खबर वाहिद भी उनको कहते हैं, ये भी कतई सबूत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अहादीस जो कि कतई सबूत है यानी मुतवातिर, ठीक है, अब उनमें ये बात हो रही है कि वो अपने मफहूम और मुराद को साफ साफ जाहिर करती हों, उसमें किसी किस्म की उलझन या इबहाम ना हो। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की आयात हैं, सारी की सारी कतई सबूत हैं, लेकिन उनके अंदर अलिफ लाम मीम, ये कुरान मजीद की आयत है ना, कतई सबूत है लेकिन इसके अंदर इबहाम है। क्या मतलब है भाई इसका, किसी को नहीं पता सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के, और उन्होंने हमें बताया ही नहीं। तो ये नहीं है कतियुद दलाला। उसी तरह अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, क्या है फिर उसके बाद सूरह नूर की जो आयात है ना, मुश्तबिहा जन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कतियुद दलाला नहीं है, ये कतियुद सबूत तो है लेकिन ये कतियुद दलाला नहीं। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, कोई सवाल बता दें, आप डायरेक्ट मैसेज अगर करेंगे ना तो किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा कि आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ मुझे पता चलेगा और फिर उसकी खैर है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? सही है, यानी हर आयत कतई सबूत है लेकिन हर आयत कतई दलाला नहीं, जैसे मुश्तबिहात वाली आयत और ये हरूफ मुकत्तआत वाली जो है ना, काफ हा या ऐन मीम सौत, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की उलझन या इब्हाम ना हो कि जिसमें किसी की तावील चल सके। ठीक है, यानी अगर उलझन और इब्हाम होगा तो फिर तो तावीलात चल सकती हैं कि हम इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये, जैसे कि अलिफ लाम मीम के बारे में मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ जो है वो तावीलात दी हैं। किसी ने कहा अलिफ का मतलब जो है वो अल्लाह है, लाम का मतलब जो है वो जिब्रील के लफ्ज से जो है ना वो लाम अल्लाह ताला ने दिया, और मीम जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कोई कोई इसका कंफर्म सबूत नहीं है कि अलिफ लाम मीम का मतलब ये होता है अल्लाह, जबरील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ये मुख्तलिफ तावीलात हैं मुख्तलिफ उलमा की। किसी ने कुछ और इसका मतलब दिया है, किसी ने कुछ और मतलब कहा है, मुख्तलिफ तावीलात हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये है कतई उद्दलाल। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया कतई सबूत क्या चीज होती है और कतई उद्दलाला क्या चीज होती है। ठीक है, तो ये जो ऐसे आयात हैं ना, फिर वो उसूल फिका के अंदर आप जाएं तो फिर वहां पे माशाल्लाह हमारे फुकहा ने इसकी बड़ी बहुत तफसीलात लिखी हैं। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी उसूल फिका पढ़ चुके हैं वो टर्म से वाकिफ होंगे। इनको कहते हैं जी जाहिर, नस, मुफस्सर, मुहकम। ये सारी की सारी जो है ना ये कतई दलालत, यानी वैसी आयत जो कि या तो जाहिर हो, जाहिर भी कतई दलालत है, और नस ये भी कतई दलालत है, और मुफस्सर ये भी कतई दलालत है, और मुहकम ये भी कतई दलालत है। ठीक है ना, लेकिन हर आयत जो है ना ये जाहिर और नस और मुफस्सर और मुहकम नहीं होती, जो होती हैं वो जो है वो कतई दलालत। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, उसको पॉज कर दिए। ये वो पति दलाला भी क्लियर हो गया सबको। अच्छा, उसके बाद जो है ना फरमाते हैं किस्म नंबर 2 के बारे में मजीद फरमाते हैं कि फिर इस किस्म के अहकाम कतईया, यानी जो कतई दलालत है। ठीक है, तो इस किस्म के अहकाम कतईया अगर अगर मुसलमानों के हर तबके खास व आम में इस तरह मशहूर व मारूफ हो जाए, इस तरह फेमस हो जाए, वेल नोन हो जाए, पॉपुलर हो जाए कि उनका हासिल करना किसी खास एहतमाम और तालीम व ताल्लुम पर मौकूफ ना रहे। मौकूफ मीन्स हमारी इंग्लू में इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट ना रहे, लिंगरिंग ना रहे। ठीक है ना, मौकूफ ना रहे। ठीक है, बल्कि आम तौर पर मुसलमानों को विरासत में, विरासे में यानी विरसे के तौर पर अपने बाप दादा, अपने नानी अम्मा खाला फुप्पो, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं विरासत में इल्म मिलना, अपने बड़ों से जो आप सीख लेते हैं बचपन से ही सीख लेते हैं, या थोड़ा बड़े होने के बाद बहरहाल जैसे भी मुंह मारते इधर उधर जो आएगा आप सीख लेते हैं इस वाले इनको। तो मुसलमानों को विरासतन वो बातें मालूम हो जाती हैं, जैसे नमाज, रोजा, हज, जक़ात का फर्ज होना। नमाज का तरीका भी, वैसे तो नमाज तो 5 वक्त दिन में है ना, तो फिर वो भी आपको अम्मी अब्बू से ही आ जाती है। रोजा भी जो है वो माशाल्लाह रमजान आता है, एक सेलिब्रेशन होती है माशाल्लाह, हमारे यहाँ तो रमजान वैसे भी एक वेकेशन है। ठीक है, तो वो भी पता चल जाती है। आजकल तो वैसे रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल ज्यादा पता लगती होगी, रमजान से भी आगे बढ़ गए उसके अंदर तो वो वैसे नहीं है इसके अंदर शामिल। लेकिन नमाज, रोजा, हज, ठीक है, हज का तरीका तो नहीं आता लेकिन हज का पता तो है ना सबको कि हज फर्ज है, जकात का फर्ज है तो फर्ज होना इस पॉइंट पे। चोरी, शराबखोरी का गुनाह होना, चोरी का गुनाह होना, अब ये वो नॉन मुस्लिम भी चोरी को गुनाह, नमाज ना पढ़ने को नॉन मुस्लिम तो नहीं गुनाह समझते ना, लेकिन चोरी को तो नॉन मुस्लिम तक गुनाह समझते, यानी गलत समझते। शराबखोरी का गुनाह होना, ये चले मुसलमानों में गुनाह समझा जाता है और काफिरों में से चंद के नजदीक ये भी गुनाह समझा जाता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुल अंबिया होना, खातिमुल अंबिया होना या खातमुल दोनों वगैरह, तो ऐसे अहकाम कतईया को जरूरियात दीन के नाम से ताबीर कर। ठीक है ना, यानी कतई दलाला की बात हो रही है कि कतई दलाला में से वो वैसे अहकाम, वो वाले अहकाम जो के विरासतन मुसलमानों को मुंतकिल हो जाते हैं उनके अम्मा अब्बा से, उनके दादा दादी नाना नानी से, या माहौल मुआशरे से मिल जाते हैं, उनको जरूरियात दीन कहा जाता है। और जो इस दर्जे मशहूर ना हो वो सिर्फ कतियात कहलाते हैं। ठीक है, तो अब कतियुद दलाला की दो किस्में बन गई। ठीक है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं, वरना मेरे लिए इसको समझाना भी इतना आसान नहीं। उम्मीद है कि आपके लिए समझना आसान हो, मेरे लिए समझाना आसान नहीं था, अल्लाह ने मेहरबानी फरमा दी। तो कतियुद सबूत, फिर कतियुद सबूत के अंदर से कतियुद दलाला। ठीक है, यानी नॉट ऑल कतियुद सबूत और कतियुद दलाला, बल्कि कुछ कतियुद दलाला होते हैं। अब उन कतियुद दलाले में से कुछ जो है वो जरूरियात दीन होते हैं, और कुछ जो है वो जरूरियात दीन नहीं होते हैं, सिर्फ कतियुद होते हैं। ठीक है ना, खुद को कोई अगर चार्ट वार्ट बनाना चाहे या बना रहा हो अपने कागज के ऊपर, तो वो उसके लिए और आसानी हो जाएगी इसको समझना। ठीक है, अगर किसी भाई ने बनाया हो तो वो बाद में शेयर कर ले, तो बाकियों के साथ भी शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और जरूरियात और कतियात के हुक्म में ये फर्क है कि जरूरियात दीन का इनकार बइजमाए उम्मत मुतलकन कुफर है, पूरी उम्मत का इजमा इस बात के ऊपर कि जरूरियात का इनकार मुतलकन कुफर। जैसे जकात का इनकार, तो उस वक्त क्या उम्मत थी? सहाबा कराम उस वक्त की उम्मत थे, तो सहाबा कराम ने कहा नहीं, यानी कहा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, नहीं जकात का इनकार किया है, दैट मीन्स के बस मैंने इसके साथ जिहाद करना है, कतार करना है इनके साथ। बाकी सहाबा ने शुरू में उनको नहीं बात समझ में आई, उन्होंने उमर फारूक जो के मुशीर थे, सबसे मुशीर अव्वल थे अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने जाकर के सवाल किया कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। अबू बकर सिद्दीक उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दे दिया, उनको कन्विंस कर लिया। अब उसके बाद जो है ना, ये बात सारे सहाबा में फैल गई और सब ने इससे इत्तेफाक कर लिया, किसी किसी ने इनकार नहीं किया इससे। तो ये हो गया इजमाए सहाबा और इजमाए उम्मत, क्योंकि उस वक्त की उम्मत सहाबा इकराम ही थे। ठीक है, वैसे तो और भी उस जमाने में ताबईन भी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अब कोई शख्स मुसलमान हुआ तो अब वो कोई थोड़ी सहाबा है, अब वो कोई थोड़ी सहाबी है, वो तो ताबईन में है। लेकिन लिल अक्सरे हुक्मुल कुल, अक्सर के ऊपर कुल का हुक्म लगाया जाता है, तो सहाबा जो थे ना वो अक्सरियत में थे उस, तो उन्हीं को कुल कह दिया गया कि हाँ भी पूरी उम्मत यही है। वैसे भी जो इजमाए उम्मत होता है, ये जो जो किसी नए आने वाले को जिसके पास इल्म नहीं है अभी, उसके मानने को इजमाए उम्मत नहीं कहा जाता, बल्कि इजमाए उम्मत उलमा को कहा जाता है, और सिर्फ सहाबा ही थे ना उस जमाने। ठीक है, तो फरमाते हैं कि जरूरियात और कतियात के हुक्म में ये फर्क है कि जरूरियात दीन का इनकार बइजमाए उम्मत मुतलकन कुफर है, ना वाकिफियत व जहालत को इसमें उजर ना करार दिया जाए। ये मुझे पता ही नहीं था कि नमाज फर्ज है, आपके सवाल का जवाब। ठीक है ना, रिमोट लोकेशन, रिमोट लोकेशन में भी हुज्जत तमाम है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है ना, अकल है ना अगर आपके पास, चाहे आप रिमोट लोकेशन में रहते हो, ये अकल जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत है। मारे गए सारे के सारे, हमारे तो हम रिमोट में ना भी हो तो भी हम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, आपका सवाल तो रिमोट लोकेशन के बारे में था ना, गांव देहात दूर दराज वगैरह। ठीक है, हम तो दरमियाने शहर में मस्जिद के बराबर में, मदरसे के बराबर में रहते हुए, हम अपनी अल्लाह की सबसे बड़ी जो हमें वसीले के तौर पर जो अल्लाह ताला की नेमत हमें मिली है वसाइल में से, वो क्या है? अकल शरीफ, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते जिद की वजह से ना, या अपनी प्रायोरिटीज के मेस्टअप होने की वजह से हम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कि दीन की जो है ना वो जरूरियात, भाई अगर तुम्हारे अम्मा डैडी ने तुम्हें नहीं बताई है तो तुम बराबर में जो मौलवी साहब रहते हैं उनसे जाकर के पूछ लो। ठीक है, तो बड़ा खतरनाक जुमला है ये, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, कि ना वाकफियत व जहालत को इसमें उजर ना करार दिया जाएगा और ना किसी किस्म की ताबीज सुनी जाएगी। ठीक है, जो लोग कुर्बानी का इनकार करते हैं वो लोग भी फिर में ही आते हैं, कुर्बानी का इनकार करते हैं, क्योंकि कुर्बानी है ही नहीं। हाँ, इसके ऊपर देख लें, जो बड़े बड़े मशायख हैं उन्होंने कुर्बानी के ऊपर बाकायदा रिसाले लिखे हैं, और एग्जैक्टली उनके अल्फाज क्या हैं इस वक्त बिल्कुल मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो देख लें। वैसे मैं अभी जब तक तो मुझे याद ना हो मैं इसके जवाब अभी नहीं देने चाह रहा हूँ। तो ये भी वैसे अगर सिंपल अपनी मुशाहदे की बुनियाद पर जवाब दिया जाए, तो पूरी उम्मत को कुर्बानी का पता है, ये कुर्बानी है, दीन का हिस्सा है। तो ना वाकफियत व जहालत को इसमें उजर नहीं करार दिया जाता, ठीक है, क्योंकि वाकफियत जो है वो फर्ज है, इनका इनकी वाकफियत हासिल करना फर्ज, क्योंकि यही तो इल्म अल हाल में है, तलब अल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम मुस्लिम। ये कौन सवाल इल्म की बात हुई, ठीक है, ये इसी इल्म अल हाल जरूरियात दीन का इल्म, ठीक है ना, जिससे कि आपको वास्ता पड़ता है। अच्छा, कतियात महज, यानी महज कतियात जो शोहरत में इस दर्जे को नहीं पहुंची, यानी जरूरियात दीन के अलावा जो दूसरी कैटेगरी बनी ना कतियो दलाला में से, ठीक है, तो अब उनकी बात हो रही है कि जो शोहरत में इस दर्जे को नहीं पहुंची, तो हनफिया के नजदीक उसमें ये तफसील है कि अगर कोई आम आदमी बवजह ना वाकिफियत व जहादत के उनका इनकार कर बैठे, तो अभी उसके कुफ्र और इर्तदाद का हुक्म नहीं किया जाएगा, यानी उसको काफिर नहीं करार दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो रिमोट लोकेशन वाले जो है ना, वो किसके लिए, वो जो के कतियात महज़ा हैं लेकिन जरूरियात के दर्जे को नहीं पहुंची होंगी, ठीक है, तो उनके लिए फिर ठीक है, उन्होंने बरूनी टाउन का फतवा भी बता दिया कि कुर्बानी का इनकार करने वाला काफिर ही है, ठीक है। और आप जरा देख लें हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी का इनकार करते, ठीक है, इसी वजह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारे अजीज व अकारिब में से, हमारे दोस्त अहबाब में से जो दीन से खारिज हो चुके हैं, ऐ अल्लाह आप ही हिदायत देने वाले हैं, आप उनको वापस दीन में दाखिल होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। दुआ तो हम कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन इसकी अहमियत को समझेंगे तब दुआ करेंगे ना। ये सारी क्लास किस लिए की जा रही है, इसी लिए की जा रही है ताकि हम कम अज कम दुआ तो करें अल्लाह ताला से, जिस चीज को अहम ही नहीं समझते, जिस चीज को मानते ही नहीं है, नहीं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, सब ठीक है, सब जो है वो मुसलमान हैं और सब जो है इतने अच्छे तो हैं, इतना नाइस एंड फ्रेंडली एंड नमाज भी पढ़ते हैं और फलाने काम भी करते हैं और ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो आप दुआ मांगिए फिर ऐसे शख्स के लिए जिसके बारे में आपका ये माशाल्लाह इतना जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना ठंडे पेट वाला, पीछे हजरत ने अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, वुसअत नजरी वाला, आपका अगर ओपिनियन हो अपने उन रिश्तेदारों के बारे में, वसीउ नजरी वाला ओपिनियन हो कि नहीं कोई मसला नहीं है, सब चलता है, एवरीथिंग इज ग्रेट, क्या आप दुआ मांगेंगे उसके बाद उसके लिए, क्या मांगेंगे दुआ, कोई कहे कि हाँ मैम फिर भी मांगूंगा दुआ, और चीजें नहीं रह गई आपके लिए फिर दुआ मांगने के लिए, अपनी जॉब के लिए दुआ, अपनी बेटी की शादी के लिए दुआ, फलाने के लिए दुआ, फलाने के लिए, भाई दुआ तो उसके लिए मांगिए ना, बेटी की शादी करनी है तब दुआ मांगिए ना, वरना आज सुबह तो बात जो हुई है कवातीन की क्लास के अंदर के माँ बाप को अब बेटी की शादी की परवाही कोई नहीं, क्योंकि वो खुद कमाएगी, खुद ही खा, खुद ही जो है वो अपनी शादी का इंतजाम करेगी, पैरों पर खड़ा कर दो बस उसको किसी तरीके से, तो जब बेटी की शादी की फिक्र नहीं तो माँ बाप दुआ भी मांगेंगे, तो भाई दुआ तो उस चीज के लिए मांगी जाती है ना कि जिस चीज की फिक्र हो, तो रेलेवेंस है, क्यों खामखा ये उनको और कुछ नहीं मिला जो उन्होंने जो है ना वो ईमान और कुफर पढ़ाना शुरू कर दिया आम आम लोगों को, आवाम उन्नास को, इतनी टेक्निकल किस्म की बातें पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, इसलिए पढ़ा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, दुआ तो मांगेंगे ना कम अज कम उसके बाद जब अहमियत समझ में आएगी इस बात की, ठीक है, इस अजम्पशन से बाहर निकलेंगे कि कुछ नहीं होता, इस अजम्पशन से, इस गुमान से बाहर निकलेंगे, इस खुशगुमानी से बाहर निकलेंगे तब दुआ मांग सकेंगे, ठीक है। इफ समवन सेज कुर्बानी, आप तो कुर्बानी के पीछे पड़ गए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, सो ही इज ऑल्सो एक काफिर, बाप जाए दारुल इफ्तिराज से जाके पूछा। अच्छा, बहरहाल अभी इसको समझने की कोशिश करें जो पढ़ा जा रहा है, तो फरमाते हैं कि पहले उसको तबलीग की जाए। अच्छा, तो अगर कोई आदमी बवजह ना वाकफियत व जहालत के उनका इनकार कर बैठे, तो अभी उसके कुफ्र और इर्तदाद का हुक्म ना किया जाएगा, बल्कि पहले उसको तबलीग की जाएगी कि ये हुक्म इस्लाम के कतई सबूत और कतई दलालत अहकाम में से है, उसका इनकार कुफ्र है, इसके बाद भी अगर वो अपने इनकार पर कायम रहे तब कुफ्र का हुक्म किया जाएगा, ठीक है। इस इबारत को दोबारा सुनना है कि कतयुल
قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجے کو نہیں پہنچی، تو حنفیہ کے نزدیک اس میں، تو یہ حنفیہ یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں نا، باقی تین کی بات نہیں ہو رہی، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کے نزدیک، ٹھیک ہے، یعنی حنفی علماء کے نزدیک. اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی عام آدمی بوجہ نا واقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے، تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت احکامات میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے، تب کفر کا حکم کیا جائے. ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے علماء احناف کو کہ تھوڑی لچک پیدا کی، لچک، ٹھیک ہے، کہ بھائی اچھا اب اس کو نا تھوڑا سا امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز کے اندر جائیں، پریکٹیکلٹی کے اندر جائیں، کہ آپ کا کوئی کزن، آپ کا کوئی جو ہے وہ خالہ، پھپھو، چاچو، ماما، رائٹ، یا اپنا آپ کے والد صاحب، یا آپ کی والدہ صاحبہ، یا آپ کے جو ہے وہ دادا صاحب اور دادی صاحبہ، وہ اس قسم کے مسئلے کا شکار ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں. آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تبلیغ کریں گے نا تو وہ اس سے بھی بڑھ کر کے انکار کریں گے، اس سے بھی بڑھ کے، جتنا پہلے انکار کر رہے تھے نا اس سے 10 گنا زیادہ اور انکار کرنا شروع کر لیں. اسی وجہ سے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا، وہ اس میں تو دعا کر لیں دل سے، ٹھیک ہے نا، اس کی گریویٹی آف دی سچویشن کو سمجھتے ہوئے دعا کر لیں اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو بیوی شوہر کو کچھ کہہ دیتی ہے نا تو شوہر آگے سے ایسی بات کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد آج صبح ہی فتویٰ پڑھا کہ بیگم صاحبہ نے جو ہے وہ شوہر صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ پینٹ شرٹ نہ پہنا کریں، اور پینٹ شرٹ جو ہے نا یہ تو کفار کی مشابہت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشابہ بقوم فہو منہم، تو شوہر صاحب نے آگے جواب دیا میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو اب بیگم صاحبہ نے ان سے کہا کہ یہ تو حدیث ہے، تو شوہر صاحب پھر آگے سے یہ کہنے لگے کہ نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں، انہوں نے آگے سے وہ دو تین ایکسپلینیشنز دیں، لیکن بنوری ٹاؤن والوں نے یہ تو نہیں جواب دیا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، بنوری ٹاؤن ہی کا فتویٰ تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ جا کے نکاح کی تجدید کر لیجیے گا، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول اپنے شوہر صاحب کے ساتھ کر لیجیے. ٹھیک ہے، تو آج کل ایسا ریسپانس ملتا ہے رشتہ داروں سے، قریبی قریبی لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو اب تو پھر جو ہے نا وہ کیا رہ گیا ہمارے پاس، باقی دوا باقی نہیں رہ گئی، صرف دعا باقی رہ گئی، اور دعا ہی صحیح سے کر لیں اگر اللہ سمجھ عطا فرما دے. ٹھیک ہے، پہلے تو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، وہ بار بار کہنا پڑتا ہے نا کہ ہم جس دور، بھائی ہم اپنے دور کے حساب سے ہی بات کو سمجھیں گے نا، تو اس دور کے اندر جو وجہ بن رہی ہے ان سب چیزوں کی وہ کیا ہے؟ دین سے دوری، علماء سے دوری، اور کفر کے نظام سے قرب، کفر کے نظام سے قرب، رائٹ، تعلیمی نظام کے ذریعے سے، ماحول معاشرے کے جو احوال ہیں ان کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ہم کفر کے نظام کے کتنا قریب ہیں اور دین سے کتنا دور ہیں، کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ضروریات دین کبھی نہیں پتا، ضروریات دین، یہ یعنی قطعیات محضہ کی بات ہو رہی ہے نا، نہیں، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں ضروریات دین کا نہیں پتا ہوتا، جیسے قربانی ایک مثال ابھی ہوئی، اسی طرح سے ایسے بھی ہیں بہت سارے پڑھے لکھے یعنی سیکولرلی پڑھے لکھے، جن کو کہ زکوٰۃ اور حج اور فرض کا اور نماز کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ضروریات دین ہے، نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ احناف کو جزائے خیر دے کہ اگر ان کے اصول کو فالو کیا جائے، تو پھر آج کل جو ہے نا وہ جن کو کہ ہمارے پچھلے دور کے علماء ضروریات دین میں شامل کیا کرتے تھے، آج اس نگوڑ مارے تعلیمی نظام اور میڈیا کی وجہ سے جن کو کہ ہم مرے چلے جا رہے ہیں جن کے پیچھے، اور جن کے بغیر جو ہے نا وہ ہمیں سانس نہیں آتی، ہم نے اس کو آکسیجن سمجھ لیا ہے، اس والے تعلیمی نظام کو اور اس میڈیا کو فالو کرنے کو ہم نے آکسیجن سمجھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے ضروریات دین بھی جو ہے نا وہ بھی قطعیات محضہ بن گئی. क्योंकि पता ही नहीं कि वो जरूरियात दीन है। तो अल्लाह जदाए खैर दे अहनाफ को कि फिर जो है ना वो उनके उसूल के मुताबिक काफिर होने से बच गए। अब अगर कोई शख्स जो है वो उनका भी इनकार कर रहा हो तो उसको भी जो है ना फिर कतियात दीन के उसूल के मुताबिक उसको भी कहना चाहिए कि अल्लाह के बंदे ये जरूरियात दीन है, ठीक है ना। ये आपको नहीं पता, लेकिन आपके ना पता होने से क्या होता है, आपको तो बाकी तो सब कुछ पता है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, आपको साइंस के बारे में पता है, आपको मेडिसिन के बारे में पता है, आपको जो है वो मुल्की सियासत के बारे में पता है। आज किसी से पूछना है ना कि कितनी सीटें जो है वो पीटीआई के पास हैं, कितनी सीटें जो है वो पीपीपी के पास हैं, सब लिख करके बता देंगे, राइट। और जो है वो अभी जो तरमीम हो रही थी वो तरमीम क्यों हो रही थी, उसके अंदर क्या उसकी लॉजिक थी, और क्यों जो है वो उसके खिलाफ थे, और क्यों जो है वो फलाने फलाने मुबस्सिर ने जो है वो क्या कहा था उसके बारे में, और फलाने लीडर ने क्या कहा था उसके बारे में, सब पता है। नहीं भी पता तो फौरन रिसर्च करके बताएंगे। और एक अल्लाह का दीन ही रह गया जिसकी जरूरियात का भी नहीं पता, और उसके ऊपर जो है वो शोर मचाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, राइट। उस दिन अल्लाह ताला तुम्हारे सामने तुम्हारे वो YouTube जो तुम वीडियोस चला के देखते रहते हो ना, अल्लाह ताला वो वीडियो तुम्हारे सामने चला करके दिखाएंगे तुम्हें। इनका पता था ना, इतने टाइम टाइम नहीं था तुम्हारे पास, इनके लिए तुम्हारे पास टाइम था, मेरे दीन के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था, राइट। तो हम यहाँ पे आपको लंबी चौड़ी जो है ना वो मारूफ मसाइल की बात नहीं कर रहे, जरूरियात दीन की बात कर, जरूरी आते दिन की बात कर, उनके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। क्या जवाब देंगे फिर उस दिन? तो कतियात महजा जो शोहरत में उस दर्जे को नहीं पहुंची, तो हनफिया के नजदीक इसमें तफसील है कि अगर कोई आदमी बैरागी हो चुका है, ना समझ में आओ तो कुछ है, इधर उधर के सवाल जो है वो आप ज्यादा कर रहे हैं आप लोग। अब वो कैसे करेंगे, हजरत हस्बैंड तो ये भी नहीं मानेगा, ये उनका मसला है भाई, हम क्या करें। What you talk about that Quran is tawatur not qat'i subut, can you please explain it? नहीं, बहुत एक्सप्लेन किया, थोड़ा पीछे रिवाइंड करके सुन लीजिएगा किसी और का। बहरहाल ठीक है, वैसे मैंने खुद ही कहा था चले अगर सवाल समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, लेकिन टाइम खत्म हो गया यार। बहरहाल 1 मिनट अंदर आगे के सवाल पढ़ लूँ। तो क्या हम जरूरियात दीन को डिफाइन कर सकते हैं या करने के अहल हैं? जरूरियात दीन को डिफाइन कर सकते हैं या करने के अहल हैं, इतना तो इन्होंने डिफाइन किया है, जरूरियात दीन को रीडिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, रीडिफाइन कर सकते हैं करने, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये करने वाले दारुल इफ्तार के अंदर बैठे हुए मुफ्ती हैं, ठीक है, हम रीडिफाइन नहीं कर रहे, अपने गुमान को जरा दुरुस्त कर लें आप, ठीक है। बात समझने की कोशिश करेंगे, कहने का मकसद क्या है, क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट यू टॉक अबाउट, तो तवातुर नॉट कतई, भाई बताया था ना कि कुरान मजीद के अंदर अलिफ लाम मीम, ठीक है, तो ये कतई सबूत है कि हाँ अलिफ लाम मीम अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और ये कुरान मजीद का हिस्सा है, तो कतई सबूत है अलिफ लाम मीम। लेकिन ये कतई दलाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मानी और मफहूम है ये वाज़े नहीं है, किसी को नहीं पता अलिफ लाम मीम का क्या मानी है, ठीक है। तो कतई दलाला का मतलब क्या लिखा हुआ है कि वो अपने मफहूम और मुराद को साफ साफ जाहिर करता और इसमें किसी किस्म की उलझन और इबहाम ना हो। तो अलिफ लाम मीम के अंदर इबहाम है ना, इसका ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये मतलब भी हो सकता है, या कुछ पता नहीं इसका क्या मतलब हो सकता, ठीक है ना। तो बात सादा सी सिंपल सी है, ठीक है। मिसाल के जरिए से अल्लाह ताला ने आपके लिए मेहरबानी फरमाई, वरना मेरे पास मिसाल थी नहीं इसकी, ये क्लास के दौरान आई है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें कहते हैं कि इसका इनकार कुफर है, और इसके बाद भी अगर वो अपने इनकार पर कायम, यानी उसको जिसने के इनकार किया है ना, तो उसको तबलीग की जाएगी, उसको समझाया जाएगा कि भाई आपने जो है ना ये जिस चीज का इनकार कर रहे हैं ये जरूरियात दीन में से है, और इसका इनकार करना जो है वो कुफर होता है, आप रुजू कर लें अपनी इस बात से, आप तौबा कर लें अपनी इस बात से। इसके बाद भी अगर वो अपने इनकार पर कायम रहे तब कुफर का हुक्म किया जाए, और वो भी कोई समझाने वाला उसको काफिर नहीं करार देगा, बल्कि ये भी जो है मुफ्ती हजरात का काम है, वही ये उन्हीं का शोब है और उन्हीं के पास इसकी अथॉरिटी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हजरत ने इबारत लिखी है, तो अब उसका इतना वक्त नहीं है क्योंकि क्लास का टाइम है।
बाकी इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो बात बाकी। एक लंबा था उन्होंने फिर मैसेज कर दिया, देयर इज अ हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट इफ समबडी फॉलोज 90% ऑफ ऑर्डर्स ऑफ इस्लाम बट डज नॉट फॉलो द रिमेनिंग 10% सो ही विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, ही विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड एंड देयर विल बी एन एरा नियर कयामा इन व्हिच इफ अ मुस्लिम फॉलोज ओनली 10% So he will be excused on the day of judgment. So we are in this era. That's why ulama are being bit polite in giving fatwa. नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपने जिस हदीस का तस्करा किया है वहां पे अमल की बात हो रही है। फॉलोइंग का मतलब होता है, और अंग्रेजी में भी जो आप कह रहे हैं ना फॉलोइंग 90%, तो भाई वो अमल की बात हो रही है कि वो जो अहकामात हैं उनमें से 90% पे अमल। सहाबा के बारे में कि अगर तुम 10% को भी छोड़ोगे ना तो तुम दीन से बाहर निकल जाओगे, और एक जमाना आएगा कि वो सिर्फ 10% पे अमल करेंगे लेकिन वो फिर भी कामिल दीन के अंदर होंगे। वहां पर अहकाम के ऊपर अमल की बात हो रही है, अहकाम को रद्द करने की बात नहीं हो रही। रद्द तो एक कतियो दलालत हुक्म को जब रद्द कर दिया जाता है तो वो काफिर हो जाता है, चाहे वो उस एरा के अंदर हो चाहे वो इस एरा के, इसमें एरा को कोई फर्क नहीं। ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि उलमा आर बीइंग अ बिट पोलाइट इन गिविंग फतवा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो भाई व्हाई कांट दे बी पोलाइट अबाउट कादियानीज एज वेल। उनके पास के चार हाथ हैं और दो दो पैर की बजाय जो है वो डेढ़ पैर होते हैं उनके, और उनकी दो नाकों की दो नाकें होती हैं कादियानियों के पास। पोलाइटनेस दिखानी है तो कादियानियों के लिए भी दिखाएं भाई, जरा भरे पेट पोलाइटनेस दिखाएं ना। और कादियानियों की क्या बात है कि बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी और जगहों पर भी, ठीक है ना, जिनके बारे में फतवे हैं कि नहीं वो काफिर। तो आपकी ये समझ बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये पोलाइटनेस वाला वाला मसला नहीं है। पिछली क्लास में बल्कि इसको समझ, पिछली जो पिछली बुध की क्लास है ना उसके अंदर एक बात को समझाया था, समझने की कोशिश करें हम किन हालात से गुजर रहे हैं, और उलमा जो है ना वो उलमा वो किन हालात से गुजर रहे हैं। आपको नहीं अंदाजा कि उलमा किस हालात से किन से गुजर रहे हैं, और आवाम का उलमा के साथ जो है ना किस किस्म का सपोर्ट लेवल है ये हमें इसका इदराक नहीं। ठीक है, बहरहाल बहुत सारी रीजन है इसके, खाली ये पोलाइटनेस को मत समझें इसके रीजन। ठीक है, चले अल्लाह के ऊपर, और हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए, ईमान के ऊपर जिंदा रहने जीने और ईमान के ऊपर मरने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।